پاک پڑھنے کے
بے شمار فضائل و برکات ہیں. ویسے تو جس دن بھی درود پڑھیں, جس رات بھی درود پڑھیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات دو رکعت پڑھے, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, پوری سورہ,
اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے, پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے, تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے 1 فضیلت نصیب ہو جائے گی. اور یہ جو 2 انعام ہیں نا, جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی, یہ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں. فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا, آئے آئے, اور فرمایا دوسری کیا ہے, یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا. تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں. تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح, اذا جاء نصر اللہ والفتح, پوری سورت, اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ پوری سورت, اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. سبحان اللہ, ماہ رمضان تو کیا آتا ہے, بیڑا پار ہو جاتا ہے, گناہ گاروں کی بن آتی ہے. اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو درود پاک کی کیا بات ہے, نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نام حضرت پہ 1,00,000 بار درود, بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے, دم بدم اور بار بار درود, کون جانے درود کی قیمت, کون جانے درود کی قیمت, ہے عجب در شاہوار درود, جو محب نبی ہے اے کافی, جو محب نبی ہے اے کافی, چاہیے اس کو بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مرتبہ پھر ماہ غفران, نزول قرآن, رب کے مہمان, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے. کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا, مبارک ہو, ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے, چہروں پر تازگی آ جائے گی, مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی, تراوی کا سلسلہ, فرض نمازیں, کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا, کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا, سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی. سبحان اللہ, کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں, وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے, پھر آخری رات تک, لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے. جو اس مہینے میں 1 سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر, سمجھ آ رہی ہے بات, 1 سجدے پر 1500 نیکیاں, اور 1 ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر. اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں, جو پوری تراوی پڑھتے ہیں, ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے جو تراوی میں سستی کر جاتے ہیں, نوافل میں سستی کرتے ہیں. دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, باقی پھر آگے چلتے ہیں, کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے 1,000 روپے ملیں گے, پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے. اچھا جناب, جو ماہ رمضان میں پوری تراوی پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا, 20 رکعت پوری پڑھے, بندہ کہ 20 کے بعد کہیں گے کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں, ایک پورا پلاٹ مل جائے گا. ہر سجدے پر, کراچی میں نہیں, پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں, جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے. تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں, وارے نیارے ہو گئے نا, اتنا آسان. سبحان اللہ. اور سنو, وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. आज दुनिया में पता है हम किसी बड़े बुजुर्ग शख्सियत को ढूंढ रहे होते हैं, किसी आलिम दीन से प्यार होता है, किसी पीर साहब से मोहब्बत होती है, बंदा कहता है जाके यार इनसे दुआ करवा लूं हैं मेरा काम हो जाएगा। अल्लाह के फरिश्ते और वो भी कितने 70,000 सुबह से शाम तक रोजादार के लिए दुआएं कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। रमजान मुबारक की जब पहली रात आती है, अल्लाह पाक इस उम्मत की तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिस पर अल्लाह नजर रहमत फरमाए उसे कभी अजाब ना देगा। इससे पता क्या पता चल रहा है, दो तीन बातें आ गई हैं कि पहली रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी रात तो है ही इंपॉर्टेंट, वो बाद में बताऊंगा, मगर चूंकि अभी पहली रात आने वाली है ना, फर्स्ट नाइट ऑफ रमदान इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना उस रात हमें ये दो रकतें पढ़नी है, फिर फरमाए इस रात अल्लाह जिस पर नजर रहमत फरमाएगा उस पर कभी अजाब नहीं होगा, और फिर क्या फरमाया कि पहली रात आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये खास रात है, फरमाए इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है, जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10,00,000 गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी, और इस मुबारक महीने में जितने जुमे होंगे फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक, ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर हर घड़ी में 10,00,000 गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं, और वो भी कौन से, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10,00,000 बख्शे जा रहे हैं, हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं, हैं भाई समोसे आगे के नहीं आए, पकौड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10,00,000 बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे घर, अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है, ये आखिरी 10-15 मिनट। और सुभान अल्लाह, कराची वालों को तो और फायदा यह है कि ऐन उसी वक्त आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच होता है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, ए अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, ए अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10,00,000 बख्शे जाएंगे, इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। ए मेरे इस्लामी भाइयों, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10-15-20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाए, अब दुआओं में गुजारें, इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे, ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। हैं अपने दिल में खुशी दाखिल कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। आपके घर पर जैसा मेहमान आता है आप वैसी तैयारी करते हैं ना, कोई दूर का मेहमान, नॉर्मल मेहमान, आप नॉर्मल सी तैयारी करते हैं, स्पेशल मेहमान आप स्पेशल तैयारी करते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनके आने के लिए इंतजार होता है, यकीन नहीं आता वो हमारे घर आ रहे हैं, बंदा घर भी सजाता है, सफाई भी करता है, खुशबू भी लगाता है, हैं अच्छे अच्छे खाने बनाता है, मेहमान की तैयारी है ना। तो रमजान ये रब की तरफ से हमारे लिए मेहमान आ रहा है, हमारी बख्शिश करवाने आ रहा है, हमें अपने आप को सजाना है, हैं अपने अपने किरदार को सजाना है, अपनी सेहत का भी इसलिए ख्याल रखो कि मैं अब ऐसे उल्टे सीधे खाने ना खाऊं रमजान से पहले। पता है जिसकी शादी होने वाली होती है तो दूल्हे को लोग कहते हैं भाई जरा ख्याल रखना, शादी वाले दिन ही बीमार मत हो जाना, हैं एक हफ्ता पहले से एहतियात करवाते हैं, ज्यादा सफर नहीं करवाते, ज्यादा थकन वाला काम नहीं करवाते। तो क्या ही अच्छा हो कि माह रमजान से पहले हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें, मुझे रोजे रखने हैं, मुझे इंशाल्लाह तरावियां पढ़नी है, अपने काम काज को मॉडिफाई करें। हैं आप बहुत बिजी रहते हैं कारोबार में, नौकरी में, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी तरतीब बनाए कि मेरा कुछ काम कम हो जाए ताकि मैं रोजे रख सकूं, मैं इबादत कर सकूं, सारी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। लेकिन अजीब बात पता है क्या, इस वक्त दो किस्म की तैयारियां हो रही हैं, होंगे कुछ नेक लोग जो इंशाल्लाह इबादत की तैयारियां, तिलावत की तैयारियां, खूब रोजे तरावी और उसके बारे में सोच रहे होंगे, मगर कुछ लोग वो हैं जो इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे होंगे, कारोबार कैसे चमकाना है, कौन सी आइटम का रेट बढ़ जाएगा है? वो कारोबारी लोग पैसे कमाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ घर वाले वो होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई रमजान में पकाना क्या है, खाना क्या है, कौन सी आइटम लेनी है। रमजान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, जरा सोचें आप कि माहे रमजान में हम रोजे रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वजन थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं, मगर कई लोग वो हैं जिनका रमजान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोजा रखना है, रात ज्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोजा रखा था, फिर दो बार और खाते हैं कि कल फिर रोजा रखना है। तो आम दिनों में दो बार खाते हैं, रमजान में चार पांच बार खाते हैं, और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज नहीं खाते वो रमजान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, गले खराब हो जाते हैं। नहीं, माहे रमजान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूँ किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमजान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है, कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर, तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार, जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम आप दोस्त आपस में मिलते हैं क्या बात करते हैं, यार सुनाओ आज सहरी कहां करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहां करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा, तरावी किधर पढ़नी है आज, तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहां पढ़नी है, इल्मे दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआएं कहां करनी, ये गुफ्तगु क्यों नहीं होती। माहे रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेलकूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें, माहे रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहु, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अयो खल्की हादा, ए जिब्रील ये कौन सी मखलूक है। अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहि सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहाँ था। अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया, जरा सुनिएगा आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहि सलातो वसलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हाजा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूबे खुदा जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब उसने सुना तो खुशी से अपने दो सब्ज पर फैलाए, ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे, नबी पाक फरमाते मुझसे गले मिलने की सआदत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माहे रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माहे रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं उस फरिश्ते के सामने दो संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है। उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माहे रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों तुम्हारी समझ लो बात बन आई है, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम, झूम जाओ मुजरिमों रमजान महे गुफरान है। भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां, پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے، ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے، جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، جو زیادہ عبادت گزار تھے۔ یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا، اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت پہ پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علی رضوان کا، کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے۔ کہاں جی حضور، یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے، مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے، کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश माह रमजान की हम कदर करने में कामयाब हो जाएं। आपको मालूम है माह रमजान आता था ना, तो मेरे आका इसका भरपूर इस्तकबाल फरमाते थे। देखिए, हमें अगर अपनी आने वाली नस्लों तक ये बात बाकी रखनी है कि रमजान की अहमियत रहे, हमारे बच्चों को पता चले, उन्हें सारा साल इंतजार रहे, तो हमें भी माह रमजान को सेलिब्रेट करना चाहिए। नबी पाक क्या करते, मेरे आका जब चांद नजर आता ना, सुभान अल्लाह, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम किबले की तरफ रुक करके यूं दुआ मांगते। जरा दुआ देखिएगा कौन सी है। आका की दुआ क्या होती, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल अमाना वस सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलतिल दिफाइल असकाम वल औनी अलस सलाति वस सियामि वल कियामि व तिलावतिल कुरान। अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमदान वसल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनकदी व कद गफरत लना व रहमतना व अफौत अन्ना। ए अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफियत और बीमारियों से हिफाजत का जरिया बना, और नमाज, रोजे, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ऐ रब करीम, हमें रमजान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इसे हमारे लिए सलामती वाला बना, और इसे हमसे सलामती अता फरमा यहां तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मगफिरत ओ रहमत और अफ़ो दरगुजर हमारा यकीनी मुकद्दर बन चुका हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला रमजान मुबारक की आमद पर खुशखबरियां देना, लोगों को मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। इंशाअल्लाह अगर हम रमजान की आमद की खुशी बनाएंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आए और काश हम जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर एक एहतियात इसमें करनी है, जब भी रमजान आता है ना तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल होता है। क्या वायरल होता है, हदीस पाक में है कि जिसने सबसे पहले आमद रमजान की मुबारक दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसी कोई हदीस हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ही रमजान के बारे में, ना ही किसी मुबारक महीने के बारे में। ऐसे झूठे मैसेजेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जिस जो भी आपको मैसेज भेजे उसको मोहब्बत के साथ समझाएं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस पाक जरा गौर से सुन ले, जो हर मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, हैं, पहले चेक तो करें ये हदीस है भी कि नहीं, हम कहीं झूठी हदीस या झूठी बात फैलाने का सबब तो नहीं बन रहे। हदीस पाक सुनिएगा, मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। आका फरमाते जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और ये कह दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बिल्कुल भी लोग, अच्छा ये तो अजीब है ना, कहीं बैठे अल्लाह कुरान में ये फरमाता है भाई, कुरान में आया है, किधर आया है भाई, ये इसको भी नहीं पता है, हदीस में ये बात आई है, भाई कौन सी हदीस, किस किताब है, पता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं, भाई किसने कहा है आपको, कुरान में आया है, हदीस में आया है, आपको जब पता नहीं है, आपको याद नहीं है, इतना सख्त मामला है, नबी पाक की तरफ झूठ बांधना है। आका ने क्या फरमाया, अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। तो आप कह दें मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैंने कहीं सुना है, कुरान और हदीस की बात करते तो लर्जा आ जाना चाहिए, एक जबर जेर पेश का हम फर्क नहीं कर सकते कुरान में, और अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया, तुमको नहीं पता कुरान में यह है, बहस करेंगे और कुरान को बीच में ले आएंगे। ये हमारी खवातीन भी बहुत करती हैं, तो मेहरबानी करके इसे तौबा करें, और इन मामलात में जब तक आपके सामने, आप देखें आज करोड़ों लोगों की तकदीरें बदलने वाले, लाखों हजारों हाफिज और आलिम बनाने वाली शख्सियत, अमीर अहले सुन्नत ना जाने कितनी हजारों उनको हदीसें याद होंगी, कितनी रिवायतें और आयतें याद हैं, मगर आज भी आप मदनी मुजाकरे में देखें ये क्यों, ये हमारी तरबियत के लिए कि वो पहले कुरान की कोई आयत पढ़नी है तो लिखा हुआ सामने लाते हैं, हदीस पढ़नी तो पूरा पढ़ के सुनाते, ताकि एग्जैक्टली वही लफ्ज लोगों के सामने जाए जो नबी पाक के दहाने मुबारक से निकला है। हमारी आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हदीस में अपनी तरफ से हाशिए लगाएं, अपनी तरफ से माद अल्लाह कुरान पाक के बारे में, बाजों का तो ये बात ईमानियात पर आ जाएगी अगर अपनी तरफ से कोई बात एडिशन कर रहा है, तो बड़े एहतियात की हाजत है। अलबत्ता माह रमजान, एक और खूबसूरत आयत सुनिएगा, इसमें कुरान पाक ने जो हम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए ना उसका रीजन बयान किया, यानी हमारी शरीयत हमसे चाहती क्या है। रोजे तो हम बरसों से रख रहे हैं, बचपन से रोजे रख रहे हैं, कई ऐसे यहां ऐसे होंगे, लेकिन उस रोजे से हमें हासिल क्या करना है। कुरान क्या फरमाता है, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, मगर आगे रीजन बताया गया क्यों किए गए, लअल्लकुम तत्तकून। कुरान कहता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आज समझ ले, मैं इस मौजू को थोड़ा और मजीद डिफाइन करूंगा, कि रोजे फर्ज होने की वजह कुरान ने क्या बयान की, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में जो रोजे की आला तरीन हिकमत और बहुत बड़ा फायदा बयान किया गया, एक्चुअली उसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मुबारक महीना है जिसमें हमें तकवा हासिल करना है। आपने उलमाए किराम का बयान सुना होगा, वो बाज़ उलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलआकिबतु लिलमुत्तकीन। इसका माना पता है? अय हाय, यकीन करें कभी कभी खुतबा ही हिला देता है। ये जुमला अगर समझ आ जाए ना कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वलआकिबतु लिलमुत्तकीन, जो आखिरत है ना, है जो बाद वाली जिंदगी है, वो है ही मुत्तकीन के लिए। तो हम किधर जाएंगे अगर हम मुत्तकियों में नहीं है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? है, अब जरा गौर कीजिए, तकवा ये बड़ी कमाल की नेमत है, आसान नहीं है, मगर सुभान अल्लाह रमजान का रोजा जो है वो हमें मुत्तकी बनाने आया है। कुरान कहता भी यही है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। सुभान अल्लाह, तकवा कितनी बड़ी दौलत है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया, अलैका बितक्वल्लाहि फइन्नहु जिमाउ कुल्लि खैर, तुम पर तकवा लाजिम है, कि बेशक तकवा तमाम भलाइयों का मजमुआ है। तमाम भलाइयों का कॉम्बिनेशन क्या है? वो तकवा है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, ए अजीज तुझे जानना चाहिए कि तकवा एक नायाब खजाना है, अगर तुम उस खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गए तो तुम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे। यूं समझो कि दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां तकवा में जमा कर दी गई है। और वो तकवा कैसे मिलेगा? वो रोजे से मिलता है। अगर बंदा सही मानों में रोजा रख ले तो इंशाल्लाह वो तकवा इख्तियार कर लेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, एक्चुअली रमजान को नई जिंदगी पाने का महीना करार दिया गया। ये बड़ी कमाल की बात सुनिएगा, शायद आपको हैरानी होगी कि सूफिया किराम के मुताबिक इंसान दो मरतबा पैदा होता है। हर इंसान, सूफिया किराम कहते हैं, दो मरतबा पैदा होता है। पहली विलादत तो वो मशहूर है जब हम दुनिया में आए, कोई 30 साल पहले आया, कोई 40 साल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे बनाते ना, वो तो पहली विलादत है। फरमाया दूसरी विलादत वो होती है कि जब बंदा दिल की पाकीजगी हासिल कर लेता है, जब बंदा बातनी बीमारियों से, हिर्स, लालच, हवस, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, खुद पसंदी से अपने आप को पाक कर लेता है, ये इसकी दूसरी विलादत होती है। यानी जिंदगी में एक मौका मिलता है बदलने का, है टर्न अराउंड होने का, अपने आप को सुधारने का, सच्ची तौबा करने का। एक बार फिर रमजान आ रहा है, आओ दोबारा जी लेते हैं, आओ दोबारा बदल जाते हैं, आओ अपने रब से दोस्ती कर लेते हैं। जो जिंदगी गुजरी, हमें सबको मालूम है कैसी गुजरी, क्यों ना ये रमजान अपने आप को बदलने का महीना बना दें। अल्लाह ने फिर मौका दे दिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस बात को इस तरह समझिए, एक बुजुर्ग बड़ी उम्र के थे, उनकी उम्र 60 या 70 साल थी, बाल भी सफेद थे। किसी ने कहा, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? कहते 4 साल। हुजूर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतनी बड़ी उम्र है आपके, तो अपने पोते पोतियां होंगी, आप कह रहे हैं 4 साल उम्र है। कहते हैं बात यह है कि उम्र तो बहुत ज्यादा है, बस तौबा किए हुए 4 साल ही हुए हैं, अल्लाह से दोस्ती किए हुए 4 ही साल हुए हैं, बाकी जिंदगी तो खेलों में, गुनाहों में गुजार दी है। अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाए, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है, पता नहीं हम कब बदलेंगे, कब वो जिंदगी फिर हासिल करेंगे, वरना जिंदगी कैसे गुजर रही है। हम में से बहुत सारे अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। कभी कभी तो डर लगता है यार कि जिंदगी बढ़ रही है, हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं, नेकियां बढ़ रही हैं। कभी सोचे तो सही, कोई बैलेंस शीट तो बनाओ कि हर गुजरने वाला दिन हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। ये जो बर्थडे पर खुशी बनाते हैं उनको सोचना चाहिए, मैं नहीं कहता नाजायज है, लेकिन जिसकी 20 साल का हो गया, 25 साल, 30 साल, आप समझ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मौत के करीब हो रहे हैं, एक जिंदगी का साल कम हो रहा है, हर गुजरने वाला दिन हम कब्र के करीब हो रहे हैं। अकल क्या कहती है कि जो कब्र के जितना करीब होता जाए उसे नेकियां और बढ़ानी चाहिए, मगर हमारा तो माजरा ही अलग है। आला हजरत कहते हैं ना, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुल्म है, नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुल्म है, ना तुम के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह, रोज जुल्म, रोज गुनाह, रोज खताएं, हमारा बनेगा क्या। तो कितनी कमाल की बात है बुजुर्ग ने कही, کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لَن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والو، اے نماز قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے، جس مہینے میں ہمارے دشمن، ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس تھا، شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا، بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو، اب تو رب سے دوستی کر لو، اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ، ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری، اور اب زندگی الگ ہے، اب اللہ کی رضا والی زندگی، اب سجدوں والی، اب نماز والی، اب حلال والی زندگی ہوگی. آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے، 1 سال زندہ رہے زیادہ، وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں، نمازوں میں، روزوں میں گزارا. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء بابا و ان باب العبادۃ الصیام، بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے. لوگ جناب، ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، بات آپ کو عجیب لگے گی، میں بہت چھوٹا تھا، ہمارے علاقے میں جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے ازرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے، اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ کہ ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں، تو نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے. ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے، ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور بس کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی. مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ. تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو. تو کہتے ہیں میرا روزہ ہے. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار؟ کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا، مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں مجھے تو، شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا، اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا. اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے. یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نا ایسا نہ کریں. اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے، میں نے خود زندگی میں پہلی بار جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء، فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو. بات بڑی پتے کی ہے، تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو، रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए, काश मेरे हाथ भी रोजे में हो ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े, काश मेरे पैर भी रोजे वाले हो ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाए। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है, तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में, अब देखे तो अरबों लोग रोजा रखते हैं, कोई एक इस्लामी भाई बच्चा बच्ची मुझे बता दें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन, कि जो रोजे से पहले चुपके से घर में जाए, कोई देखने वाला ना हो और कुछ खाना पीना खा ले। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि इफ्तार से पहले आप घर गए होंगे, घर में कोई नहीं है, आपने फ्रिज खोला होगा, कोई ठंडा शरबत पड़ा हुआ है, फ्रूट कटा हुआ है, घर में पानी का जग भी पड़ा हुआ है, आपको प्यास भी लग रही है, घर में कोई भी नहीं है, कोई एक ऐसा जिसने चुपके से पानी पी लिया हो, जब कोई नहीं देख रहा, भाई क्यों नहीं पिया आपने, तो आप क्या जवाब देंगे, कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ऐसा ही है ना। अच्छा ये तो चले खाने पीने की बात है, हम इफ्तार से पहले असर की नमाज पढ़ रहे हैं, हलक खुश्क थके हारे वजू खाने पर गए, वजू कर रहे हैं, जब कुल्ली करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ चुका है, मुंह और हलक में कितना फासला है, एक इंच का भी फासला नहीं है, हैं कोई देख भी नहीं सकता कि मैंने कुल्ली करके पानी कितना बाहर निकाला कितना अंदर डाल दिया, तो एक आधा घूंट पी लो भाई, किसी को नहीं पता चलेगा, तो आप क्या जवाब देंगे, कौन देख रहा है, जवाब जरा बुलंद आवाज से दो ना, कौन देख रहा है। कमाल की बात है, देखो रोजा कैसी शानदार प्रैक्टिस करा रहा है, मैं अकेला हूं, खा पी इसलिए नहीं रहा हूं कि अल्लाह देख रहा है। और आपको पता है यही खाना पीना सहरी का वक्त खत्म होने से पहले भी हलाल, इफ्तार का वक्त हो गया उसके बाद फिर हलाल, सिर्फ इस टाइम में नहीं खा पी रहा, हलाल चीजें थी रोजे की वजह से बाद में रुक गया। तो जो रब तुम्हें खाते पीते देख रहा है वो हराम काम करते नहीं देखता। आप सोचिए, ये शानदार, हम हर सब जितने मुसलमान है प्रैक्टिस करते हैं रमजान में, बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस होती है, अल्लाह देख रहा है इसलिए नहीं खाऊंगा, अल्लाह देख रहा है फिर फिल्म क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है फिर हराम क्यों देखते हो, अल्लाह देख रहा है तुम झूठ क्यों बोलते हो, रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं लोग और रमजान के बाद तो धड़ल्ले से कर रहे हैं, क्या मेरा रब माद अल्लाह तुम्हें सिर्फ खाते पीते देख सकता है, तुम्हें हराम काम करते हुए, हराम कमाते हुए, झूठ बोलते हुए, किसी पर ज्यादती करते हुए नहीं देख रहा, उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आता अल्लाह देख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की रहमत से हमें प्रैक्टिकली तकवे की प्रैक्टिस कराई जाती है रमजान में, ताकि हम तगड़े हो जाएं, हम रूहानी तौर पे मजबूत हो जाएं, शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही शैतान आजाद होता है, जो मस्जिद सुबह शाम भरी रहती है वो खाली हो जाती है, हैं जनाब फिर गलत गुनाहों के काम शुरू हो जाते, क्यों, अरे हमारी तो प्रैक्टिस करवाई गई रमजान में कि रमजान के बाद भी मजबूत रहे। आए इस बार ऐसी पक्की सच्ची नीयत कर लो कि इंशाल्लाह रमजान का भी इंतजार नहीं करेंगे, आज से इंशाल्लाह अब नमाजों की पाबंदी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, आज से अब गुनाहों को छोड़कर रमजान का इस्तकबाल करना है ना। आइए मैं बताता हूं वो रमजान कैसे गुजारते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, जब रमजान आता ना, बीबी आयशा फरमाती है आपके चेहरे का रंग बदल जाता। अच्छा क्यों बदलता था, कि खौफ खुदा कि कहीं रमजान में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये किसकी बात हो रही है, महबूब रब्बुल आलमीन जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रंग बदल जाता। क्या कभी ऐसा हुआ कि रमजान में हमारे चेहरे का रंग बदले, हम डर जाएं कि या अल्लाह रमजान तो मिल गया, कहीं इसका अदब कर सकूंगा कि नहीं, कि टेंशन ही किसी को नहीं है, फिक्र ही कोई नहीं है। नबी ये पाक का ये अंदाज था। फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर जो रमजान की बेहुर्मती करते हैं ना, जो रमजान की रातों में गुनाह करते हैं, माद अल्लाह रमजान की कदर नहीं करते, वो भी जरा एक वाकया सुन लें। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी आयरन रॉड से उसे हांक रहे होंगे, वो नौजवान 1000 साल तक अलमान अलअमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं दी जाएगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन का बयान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील ये कौन होगा, अर्ज किया हुजूर वो आपका एक उम्मती होगा। फरमाया उसका गुनाह क्या होगा, हैं? उसका गुनाह क्या होगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमजानुल मुबारक तो तशरीफ लाया मगर तौबा और इस्तगफार की बजाय माह रमजान को उसने गुनाहों में गुजार दिया। रमजान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर माद अल्लाह कोई गाली निकाले हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है। अच्छा ऐसा तो है नहीं कि जैसे रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी माद अल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो आप, कुछ भी हो जाए मैंने इंशाल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता हो, मैं कुछ गलत चीज देखता हूं, मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह। हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई, एक गुनाह और एक साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं, ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अलमान अलमान पुकारता रहेगा, मगर उससे उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। उधारा ये महीने में कदर करनी है, ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है, ये हमारे आमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था, बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते हैं। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे, मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं, मैंने फजूल, आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है। अच्छा रमजान मुबारक में प्यारे आका का एक और अंदाज, नबी पाक रमजान में 20 रकअत तरावी पढ़ते थे, याद रहे। कुछ लोग 20 रकअत में डंडी मार रहे होते हैं, वितर भी अदा फरमाते, 20 रकअत पूरी अदा फरमाते। प्यारे आका ने 20 रकअत तरावी, नबी पाक ने नमाज तरावी जमात पाबंदी से अदा ना फरमाई, सिर्फ 2 दिन अदा की और फिर सुभान अल्लाह हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की। आप फरमाते हैं कि अगर इस पर पाबंदी की गई तो फर्ज हो जाने का अंदेशा है, मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो जाती, इसलिए आपने जमात की पाबंदी ना फरमाई। अलबत्ता 20 रकअतें नबी पाक ने पढ़ी और फिर आपके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बाकायदा 20 रकअत नमाज तरावी की जमात का एहतमाम किया। तो आज पूरी दुनिया में मुसलमान तरावी पढ़ते हैं, मगर वो लोग, एक नया ट्रेंड चला है, 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी, गलत नहीं है ये, मगर इसमें एक एहतियात ये करनी है कि जो भी लोग ये इंतजाम करते हैं वो हाफिज साहब से भी कह दें, और हाफिज साहब से भी मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर कुरान पढ़ें। हम कुरान सुनने के लिए जमा होते हैं, कोई अवार्ड नहीं चाहिए, इतना माशाल्लाह 4 पारे भी पढ़ रहे हैं और 10 बजे फारिग भी कर रहे हैं, बड़े स्पीड में पढ़ते हैं, वो स्पीड में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ने का सवाब मिल भी रहा है कि नहीं? ठीक है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तलावत क्या हो रही है। तो ये कोई रेस नहीं लगी हुई, अल्लाह का कलाम है, इसके आदाब हैं, इसके जनाब कोई तरीकेकार है, इसके प्रोनाउंसिएशन हैं। बाज़ औक़ात मखारिज की गलती और सही तरीके से ना पढ़ना सवाब की बजाय गुनाह होता है। तो पढ़ने वाले भी एहतियात करें और ऐसी जगह ही जाकर पढ़ें कि जहां सही मानों में सही तलफ्फुज़ के साथ तिलावत होती हो। लेकिन अगर कोई 3 रोजा, 5 रोजा, 7 रोजा तरावी पढ़ता है, ठीक है, अगर सही तिलावत हुई और आपकी नमाज हो गई, ओके, आशिकाने रसूल के साथ आपने पढ़ी, माशाल्लाह, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने 3 रोजा खत्म कुरान कर लिया, 5 रोजा खत्म कुरान कर लिया, पूरा महीना छुट्टी हो गई। चांद रात तक, जब तक चांद नजर नहीं आता उससे पहले पहले आपने रोजाना तरावी पढ़नी है, सुन्नत मौकदा है। कुछ लोग समझते तरावी नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं है, नहीं, तरावी सुन्नत मौकदा है। सैयद आला हजरत फरमाते हैं सुन्नत मौकदा के तर्क की आदत बना लेना गुनाह है। और मैंने आपको पहले बताया आज बयान के शुरू में, हर सजदे पर 1500 नेकियां हैं, तो सुस्ती तो करनी नहीं है। 20 रकतों के बाद तरावी के वितर के बाद नफल भी पढ़ने, अल्लाह करे शहरी में उठे तो तहज्जुद भी पढ़े, हर सजदे पर नेकियां हैं। तो हमें तो और इबादत करनी है, ना कि इबादत से जी चुराने के, दूर भागने के फार्मूले इख्तियार करें। नबी पाक का एक और बड़ा प्यारा अंदाज, जिब्रील अमीन प्यारे आका के पास आते ना, तो नबी पाक जिब्रील अमीन के साथ कुरान का दौर फरमाया करते। हाय हाय हाय, हम वैसे हम में से बहुत सारे वो लोग हैं जो तिलावत करते हैं, अच्छी बात है, मगर ये दौर वाली सुन्नत भी अमल होनी चाहिए। हैं दो दोस्त बैठ जाएं, मैं पहले आपको कुरान सुनाता हूँ फिर आप सुनाएं, अल्लाह करे जबानी याद हो तो जबानी सुनाएं, वरना पढ़ के सुना दें। घर में मियाँ बीवी कर सकते हैं, बाप बेटा कर सकते हैं, भाई बहन, पर्दे के जो भी मामला फैमिली के हैं वो देख कर, अगर घर में भी अपने साथ बैठ कर दौर करें और याद करें वो कैसा मंजर होगा जब जिब्रील अमीन और नबी पाक कुरान का दौर फरमाया करते। और एक खास काम नबी पाक का ये होता कि रमज़ान में, वैसे तो मेरे आका से बढ़कर कौन है, मगर रमजान में मेरे आका खूब सखावत फरमाते, हर आने वाले को अता फरमाते। रावी लिखते हैं ऐसी सखावत होती कि जैसे तेज आंधी चलती है, उससे ज्यादा नबी पाक की सखावत जो है वो जारी रहती। तो हमें भी चाहिए कि माह रमजान में हम सखावत करें, अपने दस्तरखान को भी वसी करें और लोगों तक भी, जनाब जो मुसलमान परेशान हैं उन तक जनाब आप मदद पहुंचाएं, यहां जिस जिससे जितना बन सके। एक बात याद रखिएगा, जब भी बात सखावत की आती है ना, तो जहनों में यह बात आती है कि जनाब ये तो अमीरों का काम है, ये भूल है हमारी। सखावत जो है ना वो एक्चुअली दिल की गना का नाम है। कोई बेशक एक रुपया दे अल्लाह की राह में, इखलास के साथ दे, अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा है, हो सकता है उसका एक रुपया किसी के लाख रुपए से बढ़ जाए। तो अल्लाह की बारगाह में दिल देखा जाता है, ये ना देखो मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूं, मगर आप ये सोच लो कि अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने सखावत करनी है। और वैसे ही लोग बड़े परेशान हैं, ये दिन है सखावत करने के, किसी का दस्तरखान अच्छा कर दें, किसी की जनाब इफ्तारी सहरी अच्छी कर दें, किसी के बच्चों की ईद अच्छी कर दें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात हम रोड पर मांगने वालों को तो बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन घरों में लोग बड़े परेशान हैं, तो हमें सफेद पोश लोगों को तलाश करके। अच्छा, अब ये भी जब कहता हूं तो लोग कहते हैं यार सफेद पोश कहां से मिलेंगे। भाई आज के दौर में जिसकी आमदनी 40-50 हजार से कम है वो परेशान ही है, वो हैंड टू माउथ है, उसका पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह ने अगर किसी को नवाजा है तो बिन मांगे, एक बड़ा अजीब अंदाज भी आज हो गया है, भाई कोई जरूरत हो तो मांग लेना। कहाँ से मांगेगा जिसने सारी जिंदगी जुम्मे की नमाज पढ़ के खुद ही कुछ ना कुछ चंदा दिया था, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, वो कैसे मांगेगा, कभी मांगा ही नहीं उसने। आप क्यों किसी को मांगने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुझसे मांग लेना मैं दे दूंगा। नहीं, मुझे और आपको रब बिन मांगे दे रहा है। हम लोगों को कह रहे हैं हमसे मांगे, हम खुद देख लेना हमारे मुलाजमीन में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में जो इस लेवल के लोग हैं, और अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो बिन मांगे देने की आदत डालें। खुशी खुशी उनके घर पर सामान भिजवा दें, राशन भिजवा दें, कैश भिजवा दें, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आप देखिएगा। कभी जिंदगी में वो नहीं मांगेंगे, वो कर्जा ले लेंगे, मगर कभी किसी से मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगना उनको कभी आया ही नहीं। अल्लाह उनको कभी मांगने की नौबत में ना लाए, अल्लाह हमें भी ना लाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि मौला सारी जिंदगी देने वाला बनाई रखना, कभी मांगने की नौबत ना आए। अल्लाह हाथ ऊपर वाला अता फरमा, कभी फैलाने वाला हाथ अता ना फरमा। अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे, अल्लाह कभी मखलूक के सामने ये नौबत ना लाए। लेकिन हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने मुसलमान भाइयों की खैरखाही करें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें तो बड़ी हुई कि माह रमजान में गुनाहों से बचना है, माह रमजान में इबादत करनी है, माह रमजान में तिलावत करनी है, माह रमजान के एक एक लम्हे को इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने कहा कि इफ्तार का वक्त बड़ा मुबारक है, उस वक्त दुआएं करें। तहज्जुद पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है रमजान में, जब भी सहरी के लिए उठें आप पहले वजू करके कम अज कम दो रकत पढ़ें, कुछ देर दुआ करें, खास कबूलियत का वक्त है, और फिर आप सहरी वगैरह घर वाले मिलकर कर लें। और सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में तो एक और बड़ी नेमत हमें यह हासिल है कि दावत इस्लामी ने वो कमाल किया, अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, क्या शानदार तरीका दिया है कि जिससे मुमकिन हो कि मुझे रमजान में गुनाह नहीं करने। जो ये चाहता है कि पूरा रमजान में बरकतों वाला पालूं, तो क्या शानदार फॉर्मूला दिया कि पूरे महीने का एतकाफ दावत इस्लामी ने कई सालों से शुरू किया हुआ है, और हजारों हजार इस्लामी भाई दुनिया भर में पूरे महीने के एतकाफ में बैठते हैं, और आलमी मदनी मरकज के एतकाफ की तो क्या बात है, दुनिया के कितने मुल्कों से लोग आते हैं, और किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत भी वहां जलवा फरमा होते हैं। तो आप में से जिनसे बन पड़े जिंदगी में कोई एक रमजान तो ऐसा हो कि हम पूरा महीना अल्लाह के घर में बैठ जाएं, और फिर एतकाफ की तो क्या शान है। नबी पाक फरमाते हैं मन एतकाफा ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही। आका फरमाते हैं जो ईमान की हालत में सवाब हासिल करने के लिए एतकाफ करे उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। तो आखिरी अशरे के एतकाफ की तो शान ही निराली है, पूरा महीना नहीं तो आखिरी अशरे का एतकाफ करें। क्यों? कि एक रात है, हाँ वो बड़ी कमाल की रात है। कुरान पाक में रमजान का तो जिक्र आया ना, उस रात के लिए तो पूरी सूरत आई है सूरह कदर के नाम से। हमारे आका कितने मेहरबान हैं, ये ना फरमाया कि पूरे साल में कभी भी लैलतुल कदर आ जाए पूरा साल ढूंढना पड़ती, ये भी ना फरमाया कि पूरे रमजान में कोई भी रात लैलतुल कदर है तलाश करो पूरा महीना ढूंढना पड़ता। फरमाया रमजान के आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कदर है, उसे तलाश कर लो, हदीस का मजमून है। तो फिर इसीलिए एहतिकाफ किया जाता है कि 10 दिन अगर हम मस्जिद में हैं तो जो भी रात शबे कदर होगी वो हमें हासिल हो जाएगी। तो मुमकिन हो सके तो रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करके लैलतुल कदर की बरकतें हासिल करें। रब करीम से फिर दुआ है, ए मौला हमें सेहत के साथ आफियत के साथ माह रमजान नसीब फरमा, पूरे रोजे रखना नसीब फरमा, पूरी तरावी पढ़ना नसीब फरमा, और जो बख्शे जाए अल्लाह उन बख्शे हुओं के सदके हम गुनाहगारों की भी बख्शिश फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान में लोग अपनी जकात अपने अतियात देते हैं, पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। और उसके बाद मेरी गुजारिश है, आशिकान रसूल की अजीम तहरीक दावत इस्लामी, वो तंजीम जिसने दुनिया भर में कमाल कर दिखाया है, लाखों लाख हाफिज कुरान और जनाब नाजरा कुरान पढ़ने वाले फारिग किए, तो अपनी जकात में अपने अतियात में रमजान में जो ईद का फितरा दें उन तमाम चीजों में दावत इस्लामी को जरूर आपने उसको कंसिडर करना है, उसका साथ देना है। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब करीम हमें अपनी दावत इस्लामी का दिल खोल कर साथ देने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब